दो महान विभूतियां हमारे सामने ऐसी उपस्थित है जो दोनों ही अनुभवों के दिग्गज हैं, अनुभवों की खान है। एक एक प्रश्न के उत्तर में आपके पास एक एक किताब है, लेकिन आज गागर में सागर को समाते हुए हम सबके प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न तो इतने अधिक आए थे कि आपके प्रश्नों की भी एक मोटी किताब बन सकती है, लेकिन प्रश्नों को कुछ कुछ प्रश्नों को मिला करके सिंप्लीफाई किया गया है। बहुत से प्रश्न ऐसे मालूम पड़ रहे थे कि भाइयों ने ध्यान से क्लास से नहीं किए हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर क्लासों में मिल चुके हैं उन्हें दोहरा दोहरा के पूछा जा रहा है। योग कैसे लगाएं, आत्मा कैसे समझें, बाबा को कैसे याद, छोटे छोटे भी ऐसे प्रश्न, या तो कोर्स ध्यान से नहीं किया, या मुरली ध्यान से नहीं सुनते हैं, या क्लासों में भी मोबाइल पे खेलते रहते हैं, फिर प्रश्न लिख के देना अपनी शान समझते हैं। नहीं, इतने छोटे बचकाने प्रश्न 3 वर्ष से ऊपर के कुमारों को शोभा नहीं देते। सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे प्रश्न अगर अभी भी दिमाग में आते रहते हो तो अटेंशन प्लीज वापस जाके मुरली ध्यान से सुनना, क्लासें ध्यान से अटेंड करना। ये तो बिल्कुल हर मुरली में इन बातों का उत्तर होता है। करने की ठान लो तो जवाब तो आसपास घूम रहे हैं, सिर्फ अलबेलेपन का त्याग करना है। कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, छोटे छोटे भी लिए हैं, लेकिन हमारी दीदियां उनको भी छोटा नहीं महत्वपूर्ण समझते हुए उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन मैं कर रही हूँ आदरणीय उषा दीदी जी से। बहुत भाई ये जानना चाहते हैं कि सूक्ष्म वतन की वास्तविकता क्या है। सुना है बाबा ने पहले सूक्ष्म वतन रचा, बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आने से पहले भी क्या अव्यक्त ब्रह्मा के तन में आए थे, फिर साकार ब्रह्मा अव्यक्त हो गए, अभी भी अव्यक्त ब्रह्मा को लेकर आते हैं, फरिश्ता बनता कैसे है, हमने सूक्ष्म वतन कैसे जाना होता है, सूक्ष्म वतन का रंग रूप कैसा होता है, ये जरा हमें संक्षिप्त में स्पष्ट करें उषा दीदी।
ओम शांति, ओम शांति। सूक्ष्म वतन की जब बात आती है तो हमेशा बाबा की मुरली के अंदर ये बात आती है कि सूक्ष्म वतन की रचना मैं संगम युग पर करता हूं। और बाबा ने जब संसार में आने से पहले सूक्ष्म वतन को क्रिएट किया और उस सूक्ष्म वतन की वास्तविकता क्या है, तो ये बाबा ने हम बच्चों को संदेशों में, खास संदेशियों के द्वारा ये बात स्पष्ट की हुई है कि सूक्ष्म वतन जो है वहां चांदनी सा प्रकाश है। जैसे फुल मून की चांदनी कैसे होती कि हर चीज एकदम चमकीली, एकदम लाइट वाली दिखाई देती है, तो परमधाम के अंदर गोल्डन रेड लाइट होती है, दिव्य लाल प्रकाश होता है, लेकिन सूक्ष्म वतन में चांदनी सा प्रकाश, ये संदेशियों के द्वारा स्पष्ट हुआ है। दूसरी बात के ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में पहले बाबा ने रचा जब नीचे आना होता था तब। और जो है ये बात ब्रह्मा बाबा को भी आरंभ में पता नहीं थी, लेकिन बाबा को ये जानना था जब साकार में था, संदेशियां बाबा के पास जाती थी, पूछ के आती थी। तो एक बार बाबा के सामने एक बच्ची आई थी, तो जब वो बच्ची 12-13 साल की थी तो बाबा ने उस बच्ची को जब देखा तो बहुत इनोसेंट होने कारण बाबा ने उसको अलग से बुलाया और अलग से बुलाकर बाबा ने कहा कि बच्ची ध्यान में जाओगी। तो वो इतना समझती नहीं थी तो उसने कुछ कहा नहीं और बाबा ने उनको दृष्टि देते हुए बाबा ने उसको वतन में भेज दिया। वहां से जब वो आई तो बाबा ने पूछा उसको कि बच्ची क्या देखा। तब वो बच्ची ने बाबा से कहा कि बाबा वहां आपके जैसा ही ब्रह्मा बाबा हमने देखा, लेकिन वो ब्रह्मा बाबा बहुत सुंदर था। वो सुंदरता बाबा ने पूछा मेरे में नहीं है, कहा नहीं आप में नहीं है। तो बड़ी दीदी पास में बैठी थी तो बड़ी दीदी ने कहा मुट्ठी ऐसा नहीं बोलते बाबा को। तो बाबा ने बड़ी दीदी को स्टॉप किया कि नहीं बाबा जानना चाहता है ये बच्ची के माध्यम से, क्योंकि कोई मुझे बताता नहीं है कि वतन में क्या होता है। तो इसीलिए बाबा को जानना था कि आखिर में वतन में क्या होता है, कैसा ब्रह्मा बाबा है, वो मेरा ही स्वरूप है या कोई और है, क्योंकि उस समय ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था। तो फिर बाबा ने पूछा कि बच्ची वहां क्या देखा। तो फिर जब उसने कहा बाबा बहुत लाइट निकलती है उस ब्रह्मा बाबा में से, फिर जैसे जैसे वर्णन किया तो बाबा को समझ में आया कि मेरा ही संपूर्ण स्वरूप वतन में है। फिर बाबा के मन में ये बात आई कि ये पुरुषार्थी स्वरूप को उस स्वरूप में मर्ज होना है। तब फिर बाबा ने 2:30 बजे उठ करके पुरुषार्थ करना आरंभ किया और विशेष अमृत वेले का महत्व भी तब यज्ञ में आरंभ हुआ। तब तक अमृत वेला यज्ञ में नहीं होता था, लेकिन उसके बाद फिर बाबा ने जब पुरुषार्थ करना आरंभ किया और उसमें जो बाबा ने अनुभव को पाए तब बाबा ने अमृत वेले का विशेष अटेंशन बच्चों को खिंचवाया और अमृत वेले यज्ञ के अंदर शुरू हुआ। लेकिन बाबा की उस बात से, और जो है गुलजार दादी हमेशा शुरू में तो कोई भी ऐसे विशेष भोग होता था तो दादी जब वतन में जाती थी बाबा का संदेश लेके आती थी, तो कभी बाबा जैसे सभा दिखा देता था कि भाई बच्चों की सभा बाबा ने दिखाई और सभा के प्रति बाबा जो महावाक्य उच्चारण करते थे। तो एक दिन हमने ऐसे ही दादी से पूछा कि दादी जब बाबा आपको सभा ऊपर दिखाते हैं तो हम लोग दिखाई देते हैं। तो दादी ने कहा कि पहचानने में नहीं आते। तो मैंने कहा क्यों नहीं पहचान सकते हैं आप। तो दादी ने उस समय कहा कि ऊपर जो सभा होती है वो संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की सभा होती है। तो उससे ये बात स्पष्ट हुई कि जिस तरह ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थी स्वरूप नीचे और संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप ऊपर, ऐसे हम सभी का भी पुरुषार्थी स्वरूप यहाँ और हम सभी का भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ऊपर है।
युग में तुमको आना है।
तो इसीलिए जो है जब दादी ने कहा कि वहां जो सभा होती है उनके फीचर्स बहुत दिव्य होते हैं, तो इसलिए पहचानने में नहीं आते हैं, क्योंकि ये पुरुषार्थी स्वरूप है हमारा। तो वो स्वरूप जो है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, तो हम सभी का भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप वहां पर है, और ये स्वरूप को उस स्वरूप में मर्ज होना है और संपूर्णता को प्राप्त करना है। अब जब हम याद में बैठते हैं तो ये हम सभी जानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो एक सूक्ष्म शरीर से बाहर होती है, जो छाया जैसी होती है। तो जब हम योग में बैठते हैं और हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो वो फरिश्ता ड्रेस यहाँ नहीं आता है, यहाँ से हम वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मन बुद्धि के साथ वतन की ओर जाते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर ये हमारा अंतवाहक शरीर होता है, अंतर्वाहन बन जाता है, जो बाबा की कई मुरलियां उसके ऊपर चली है अंतवाहक शरीर के ऊपर, वो अंतर्वाहन बन जाता है और वतन में जाते हैं, और वहां हम अपना वो संपूर्ण अव्यक्ति फरिश्ते ड्रेस को धारण करते। इसीलिए वो बहुत हल्का पन को की महसूसता कराता है, क्योंकि वो संपूर्ण है, और वो ड्रेस को धारण करते ही फिर हम बाबा के सन्मुख जाते हैं, जहां बाबा भी वो संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में होते हैं। ब्रह्मा बाबा भी होते हैं, शिव बाबा का जब आवाहन करते हैं हम, तो शिव बाबा भी परमधाम से उस ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में आकर के बाबा हमारे साथ मुलाकात करते हैं। और इस तरह से जब बाबा से दृष्टि या नैन मुलाकात करते, बाबा के मस्तक से जैसे लाइट और माइट की किरणें लेते हैं, मेन बात यह है कि जब हम योग में बैठते हैं तो संपूर्ण अव्यक्ति फरिश्ता स्वरूप, तब हमारा ये स्वरूप जाकर के उस स्वरूप में मर्ज होगा, कि जितना हम अपने विकर्मों को और पाप कर्म को दग्ध करते हुए आत्मा जितनी हल्की होती जाएंगी, संपूर्णता के और जाएंगी, उतना जल्दी ये स्वरूप उस स्वरूप में मर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए उस ड्रेस को कहते हैं बाबा, वो चमकीली ड्रेस है, लाइट वाली ड्रेस है, जो चारों ओर लाइट का आभा मंडल कहो, प्रकाश मंडल कहो, उस स्वरूप का होता है।
बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया, मैं समझती हूँ सबको स्पष्ट हो गया होगा। बहुत अच्छा, अगला प्रश्न लेंगे। ये पॉइंट जो बहुत
सुनाऊं उसमें एक बात करूं, उषा दीदी ने बहुत अच्छा सुनाया। एक बार गुलजार दादी के साथ हम बीच पर गए हुए थे तो दादी ने इसका स्पष्टीकरण किया था, जैसे बताया वैसी ही बातें, और दादी ने भी ये अनुभव किया था। दादी ने कहा एक बार बाबा ने हमको मौन रहने को बोला, तो कराची में क्लिफ्टन बीच है ना, वहाँ सब बहनों को अलग 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 तीन दिन तक ये सभी ने अपना अपना एकांत में रह करके योग किया, और उसमें गुलजार दादी ट्रांस में गई, और जब दादी ट्रांस में गई तो दादी को भी ये जो संपूर्ण ब्रह्मा बाबा क्या है वो पहली बार वहां दिखाई पड़ा। तब दादी ने कहा कि ये साकारी, आकारी और निराकारी स्वरूप, तो आकारी स्वरूप क्या है जैसे उषा दीदी ने समझाया वो 100% है, और जैसे बाबा का है वैसे बताया हम सब का भी ऐसे है, हर एक का अपना मीटर अपने पास है कि हमको बनने के लिए कौन सी कमी, कैसे हमको संपूर्ण बनना है। तो दादी ने भी ये अनुभव किया साक्षात्कार में कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा जो है वो अपनी संपूर्ण स्टेज में।
बहुत अच्छा स्पष्ट हो गया कि लाइट का शरीर फिगर तो हड्डी मांस जैसा होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तो ऊपर फरिश्ता स्वरूप होता है, नीचे इस शरीर से निकलता है प्रकाश का शरीर, छाया माफिक ऊपर जाते जाते चांद तारों से पार चांदनी जैसा रीजन जहाँ लाइट का फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, वहीं हम अपने आप को इमेजिन करते कि हम और बाबा आमने सामने वहां चाहे बाबा का हाथ पकड़ो, चाहे गोदी में बैठो, चाहे गले मिलो, चाहे बादलों पर खेलो, चाहे भोग खिलाओ, चाहे भोग खाओ, सब छुट्टी है, वहां अनुभव किए जा सकते हैं। सब तरह के खुला निमंत्रण है सबको, दिन में कितनी बार भी जा सकते हैं। अब दो तीन चार ऐसे प्रश्न हैं योगिनी दीदी से। पहले आत्मिक स्थिति का अनुभव होता था, अब अनुभव करते तो सिर भारी हो जाता है। मैं आत्मा हूँ ये महसूस कैसे हो? योग लगता है परंतु योग के बाद शक्ति और पवित्रता की महसूसता नहीं होती, वो महसूसता कैसे हो?
शरीर
योग लगता है, शक्ति और पवित्रता की महसूसता नहीं होती, कैसे समझे ये शक्ति है ये पवित्रता है, कैसे पता चले? मिलते जुलते प्रश्न है। बाबा को याद करता हूँ तो आत्मा भूल जाती है, आत्मा की स्मृति में रहता हूँ तो बाबा भूल जाता, क्या करूँ? बड़ी समस्या है।
समस्या नहीं है ये, पहले तो मैं कहेंगी इसको हम समस्या नहीं कहेंगे, अनेक जन्मों के संस्कार है ना बॉडी कॉन्शियस में रहने के। जैसे वो कहते हैं ना कि कोई प्रिंस हो बंदर के टोले में मिक्स हो जाए तो उनके जैसी एक्टिविटी करना शुरू करेगा, क्योंकि उनको जो संग मिला ऐसा तो वो भी अपने को ऐसे समझने लगा। तो हमको भी अनेक जन्मों से आत्मा को शरीर का संग मिला हुआ है। तो अभी कोई 50 साल का बीमार होगा, वो डॉक्टर को जाके बोले कि मैं 5 दिन में ठीक हो जाऊं, तो डॉक्टर बोलेगा अल्लाह भाई तू 50 साल से बीमार है तो 5 मास तो ठहरना पड़ेगा ना तेरे को। तो अभी तुरंत ही जिसने क्वेश्चन किया भाई, हम कहेंगे आज की आज मेरी आत्मिक स्थिति हो जाए, हाँ आज की आज मेरे अंदर योग शक्ति भी सारी आ जाए, शक्तियां भी आ जाए, ऐसे नहीं होता है। धीरे धीरे हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है और धीरे धीरे अनेक जन्मों का हमारे अंदर जो हम बॉडी कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आ गई है, तो धीरे धीरे हमको आत्मिक स्थिति, हमारे विश्व रतन दादा थे वो हमको बहुत अच्छा अपना अनुभव सुनाते थे कि आत्मिक स्थिति जो है उसको हमें कैसे प्राप्त करना है। उसके लिए देखो हमारी जो दादा बोलते थे हमारी दिनचर्या है, पहले ये योग क्यों नहीं लगेगा, आत्मिक स्थिति क्यों नहीं रहेगी, हमको पहले हमारी दिनचर्या पर बहुत ध्यान रखना है। आप रात को किसी से लड़ाई किया, झगड़ा किया, टीवी देखा, ये किया वो किया, सुबह बोलेंगे मेरा योग लगा ही नहीं, यार कहां से लगेगा, वही याद आएगा ना। तो हमारी दिनचर्या को हमें सेट करना पड़ेगा अच्छी तरह से। रात को भी हम बाबा की याद में सब वाइंड अप करके, सब विड्रॉ करके, जैसे बाबा हमें बोलते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ परम धाम में, बाबा की गोद में रात को सो गई, सुबह में उठी तो मैं एक अवतरित आत्मा हूँ, ऐसे मुझे अपनी दिनचर्या को जो है वो सेट करना पड़ेगा। और हमारी दिनचर्या सेट बराबर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपकी जो आत्मिक स्थिति है, देखो अनेक जन्मों का मैंने बोला तो कभी वो होगा, कभी कभी हमारे से हो जाता है। हमारे पास माताएं भी कहती है बहन जी दीदी हमने 9 बार तो कंट्रोल किया, 7वीं बार हमारे को गुस्सा आ गया, तो क्या है ये सहन करने की शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। तो धीरे धीरे योग जो एक शक्ति है उससे हमको अपने अंदर हमारी जो शक्तियों की कमी है वो हमें अपने अंदर जो है वो भरते जाना है। परंतु आज का आज आप बोलो कि मेरा हो जाए ये नहीं हो सकता है। और आप बाबा को याद करेंगे तो आप आत्मा को भूल जाते हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले आप आत्मा समझेंगे तो ही बाबा याद आने वाला है। जब तक मैं शरीर समझकर बैठी हूँ तो शरीर का ही सब कनेक्शन वाले याद आएंगे ना। तो मैं जब तक अपने आप को आत्मा नहीं समझू तब तक मुझे बाबा याद कहाँ से आने वाला है। आप बहुत प्यार से बाबा के साथ सर्व संबंध पहले जोड़ो, जोड़ो अभी आज से आए हो ना, जिसका भी सवाल हो आप सुबह उठ के बाबा को सतगुरु के रूप में याद करो, गहरा संबंध जोड़ना। देखो संबंध हमारा जिससे भी गहरा है तो स्नेह है ही, तो हमको उसकी याद आ ही जाएगी, हमको कोई करनी पड़ती है ही नहीं, ऑटोमेटिक ये होने ही वाला है। तो आप गहरा संबंध जोड़ो, बाबा मेरा सतगुरु है, सतगुरु के रूप में सुबह मेरी वरदानों से झोली भर रहा है, क्लास में बाबा मेरा शिक्षक है, मुझे ज्ञान मुरली सुना रहा है, सारे दिन में बाबा मेरा साथी है, बिगर टिकट का साथी है बाबा, प्लेन में भी बिठाओ, कार में भी, कहां भी जाओ, किसका साथी पावरफुल है वो कहेंगे मेरा साथी बहुत पावरफुल है, मेरे को कोई टेंशन नहीं रहता है। तो हमारा साथी कौन है? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या आंधी तूफान, उसको क्यों ये होगा, व्यर्थ संकल्प चलेगे ही नहीं। गुलजार दादी इस पर बहुत बोलती है, बताती है कि जब हमारे अंदर आलस और अलबेलापन होगा तो हमारे अंदर ये व्यर्थ संकल्प जो है वो शुरू हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प क्या है, योग क्या है, व्यर्थ संकल्प को हम दूसरे को सिखाते हैं, व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्प में ट्रांसफर करना, उसको तो हम योग कहते हैं। तो हमारा साथी कौन है? हमारा साथी पावरफुल बाबा है, जिसके साथ मेरे सर्व संबंध है। देखो फ्रेंड भी परम कहा है ना, तमेव माताश्च पिता त्वमेव सखा। हम घर में माँ बाप से बात नहीं करेंगे सब, लेकिन हमारा जो फ्रेंड होगा ना, हम सब शेयरिंग करेंगे उसके साथ, सब बात शेयर करेंगे। तो आप बाबा के साथ सारी बातें शेयर करो ना, ये नहीं समझो आप एक बहुत बाबा को बड़े रूप में लिया है, आपने रिलेशनशिप नहीं जोड़ी है। रिलेशनशिप आपकी होगी तो आपको नेचुरल याद आएगा, कोई कोई को अपने फादर को याद करना है तो फोटो रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते हैं क्या, अरे मेरे फादर आएगा मेरे लिए ये लाएगा, एक नेचुरल याद है। तो आप ये इतना कॉन्शियस नहीं हो जाओ कि मैं आत्मा को याद करती हूँ तो बाबा भूल जाता है, बाबा को याद करती हूँ तो मेरे को भूल जा, ऐसा कॉन्शियस नहीं बनो। आप नेचुरल रिलेशनशिप बाबा के साथ जोड़ दो, बाबा के साथ गहरा संबंध जोड़ दो, तो ये जो अंतर्मुखता है ना वो आपको बहुत अच्छी तरह से अपनी आंतरिक सुंदरता जो आत्मा की है उसको इमर्ज करके आपको सहायता प्रदान करेगी। आप ये अनुभव करो।
बहुत अच्छा स्पष्ट हुआ कि ये तो अंदर का गहरा संबंध है, पहले आत्मा देखूं या पहले बाबा देखूं ऐसी बात नहीं है। फिर भी जिन्होंने पूछा है कि आत्मा फील करने लगते है, सिर दर्द होने लगता है, वो शायद आत्मा को एक सुपरफिशियल चीज मान बैठे है, जैसे माथे पे लगाई बिंदी और ऐसे घूर करके उसको देखने लगेंगे तो जरूर दर्द होगा।
सुनो अनिता बहन, सर दर्द क्यों होगा? क्योंकि वो योग नहीं उनका लगा है, ना आत्मिक स्थिति है, इसलिए देखो, इसलिए फिर क्या हो जाता है, कभी हम वो दूसरा ही सोचता है। जब बहुत सोचते हो तो बोलेंगे आज मेरा माथा बहुत भारी हो गया है, वो तो हो ही जाएगा ना, व्यर्थ संकल्प वो होंगे इसलिए उनका जो माथा है वो भारी हो जाता है। तो हमको उसको ट्रांसफर जो है वो शुद्ध संकल्प में धीरे धीरे करो, एकदम नहीं करो, धीरे धीरे आपको
शुद्ध संकल्पों का प्रयोग करें। माथे पर जो स्टार फील करते हैं उसका प्रकाश भी फैलता हुआ फील करें, स्टेयर नहीं करें, घूरे नहीं, अंदर की आंख को ऐसे कोई ऐसे करके टिका देगा जैसे वो नासिका वाला योग हठ योगी करते हैं तो जरूर सिर दर्द तो क्या सारा ही दर्द हो जाएगा। वैसा करने की जरूरत नहीं है, आत्मा का प्रकाश फील करते हुए
सच्चा योग लगेगा
ब्रेन
तो
और
लाइट रहेंगे ना,
ब्रेन से फैलता
तो
हुआ फील करें,
लाइट की फीलिंग करेंगे,
लाइट रहना,
हल्के हो जाएंगे। और
अब अगला प्रश्न हम करते हैं आदरणीय उषा दीदी जी से। बहुत कुमारों को दीदी भोजन संबंधी बहुत से अनसुलझे सवाल हैं कि हम बाहर रहते हैं, पीजी में हम जाते हैं, आजकल पीजी सिस्टम बहुत ज्यादा है, हॉस्टल सिस्टम है, वहां हम जाके कहते हैं बिना प्याज का दे दो, बिना प्याज का दाल सब्जी रोटी तो खा लेते हैं, लेकिन आज की दुनिया में बिना प्याज वाले ऑप्शन भी बहुत है, समोसा पकोड़ा भी वो बिना प्याज का दे देंगे, आइसक्रीम पिज्जा बर्गर भी दे देंगे, तो क्या खाएं क्या छोड़ें, फिर जो पवित्र के हाथ का खाना है उसका क्या बना। फिर कोई पूछते हैं कि मेरी माताजी ज्ञान में तो नहीं चलती है, नहा के बिना प्याज का बना के देती है, पवित्र तो नहीं है, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते है। फिर कोई ने पूछा, मेरे को घर में बिना प्याज का खाना तो बना के माँ दे देती है, पर किचन में अंडा भी बनता है, मैंने बाबा रूम बनाया, भोग लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? ये कुछ अन्न की शुद्धि के श्रीमत अनुसार क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा शॉर्ट में स्पष्टीकरण चाहिए।
ऐसे हैं बाबा के भोजन के लिए तो धारणाएं हमें मिली हुई है, और क्योंकि अन्न का मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है, और इसलिए योग लगाने के लिए भी जितनी भोजन की शुद्धि होगी उतना ही हमारा योग भी बहुत अच्छे से लग सकता है। परंतु कई बार जैसे कुमारों के लिए ये प्रॉब्लम है कि भाई माता पिता ज्ञान में नहीं चलते हैं और उनको खाना पड़ता है, बिना प्याज लहसुन बना करके तो वो दे देंगे, लेकिन क्या करें हम। देखो बड़ी दादी जी हमेशा ये बात कहती थी कि अगर आपको माता पिता के साथ ही रहने का है तो फिर वहां पर उनके हाथ का बना हुआ भोजन आपको खाना पड़ता है, और आप जो है उस समय बाबा को याद करके लाचारी हालत में आप खा सकते हैं, क्योंकि आप घर से अलग होंगे, समाज के अंदर उनको कई लोगों ने ये भरा हुआ होता है कि देखना आपका लड़का आपको छोड़ करके चला जाएगा, ये संस्था में गया है ना आपको छोड़ करके चला जाएगा, तो उनके अंदर भी एक भय बैठा हुआ है कि कहीं ये छोड़ के चला न जाए। तो इसीलिए ऐसे जहां स्थिति है और आप अकेले हैं, आपका कोई और भाई या बहन उनको देखने संभालने वाले नहीं है, तो नेचुरल है आपको वहां रह करके उनके हाथ का खाना खाना ही पड़ता है, और जो है वहां आप बाबा को याद करके लाचारी हालत में उस भोजन का शुद्धिकरण करके जरूर खा लीजिए। लेकिन जहां ऑप्शन है कि मान लो कि आपके साथ में बड़े भाई भी है या छोटा भाई भी है, वो भी ज्ञान में नहीं चल रहा है, तो नेचुरल है कि आप नौकरी के बहाने भी बाहर निकल जाओ, और बाहर निकल जा करके कोई बड़े शहर में चले जाओ जहां पर आप अपना छोटा सा भले पीजी ही क्यों ना हो, लेकिन वहां रह करके आप अपनी चीज बनाना शुरू करो। कई लोग कहते हैं हमें नहीं आता है खाना बनाना। खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आजकल तो मोबाइल पर भी रेसिपी सारी मिल जाती है, बनाकर खा सकते हैं। अभी किसी यहाँ मधुबन में तो अनेक प्रकार के लोग आते हैं, तो अभी एक युगल आए थे यहाँ सूरत साइड से, तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर रॉ खाना शुरू किया, रॉ माना पकाना नहीं, उन्होंने अपने घर में से गैस का चूल्हा ही निकाल दिया और कच्चा भोजन। तो वो बहन ने बताया कि मेरी 500 रेसिपीज है कच्चे भोजन की, बिना पकाया हुआ कच्चे भोजन की भी 500 रेसिपीज है उसकी, इंटरनेट पर यूट्यूब के ऊपर आप जाएंगे, रॉ फूड करके भी आप अगर डालेंगे भाई बिना, उसने कहा हमने गैस का चूल्हा निकाल ही दिया और हमारे पास 500 रेसिपीज है, और उससे हमने कईयों की हेल्थ ठीक कर दी, जितने भी शारीरिक प्रॉब्लम्स थे उसका कारण ये तेल जब गर्म होता है, और उस तेल के कारण जो है शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी जमा होना शुरू होता है सब तो कहा कि जब हमने ये पकाना चालू किया, रॉ फूड लेना चालू किया, तो शुरू में तो हमें भाई बहुत बहुत तो सलाद खा लेते थे और क्या खा सकते, अब जिंदगी भर तो ये नहीं खा सकते, तो उसने सारा इनोवेटिव माइंड से, अपने क्रिएटिव माइंड से उसने सारी रेसिपीज बनाना शुरू किया कच्चे खाने के, बिना पकाया हुआ, और उसने कहा हमारे जितने भी पेशेंट्स थे जो क्रिटिकल कंडीशन वाले थे वो भी सब ठीक हो गए ये रॉ फूड खाने से। तो आप जो है पीजी में रहते हैं तो क्या हुआ, या रॉ फूड किस तरह से बनाना है उसकी 500 रेसिपीज है, इंटरनेट पर मिलती है, आप उसी को ही देख करके वैरायटी बनाना शुरू करो। है बहुत सारी रेसिपीज वो बनाते हैं और मैं जो है उसको खास, उसने कहने के बाद मैं खास इंटरनेट पर उसकी रेसिपीज देखने गई तो कहा हम फ्रूट सलाद भी खाते हैं, तो मैंने सोचा फ्रूट सलाद क्योंकि दूध और दूध की कोई चीज नहीं खाते हैं ये लोग, तो दूध की चीज नहीं तो फ्रूट सलाद कैसे बनाते हैं। तो सारी रेसिपी उसने दिया हुआ था कि नारियल का दूध, नारियल को पीस करके उसका दूध जो निकालते हैं तो वो दूध के अंदर सारा फ्रूट काट करके सारा फ्रूट सलाद बहुत अच्छा बनाया। तो 500 रेसिपीज है, आप समझ नहीं सकते और कल काम नहीं कर सकती है कि बिना खाना पकाए भी 500 रेसिपीज अगर मिल सकती है आपको तो कौन सा आपको ये करने की जरूरत है। थोड़ा शुरू में टाइम लगता है, बाद में ठीक हो जाता है, तो इसीलिए एक आदत पड़ जाती है।
पका हुआ खाना हो पीजी में दिल करता है अभी तो क्या करे,
है? पका हुआ,
पका हुआ खाने का दिल करे तो क्या करे,
तो चावल दाल तो बना सकते हैं ना,
पका हुआ ही खाने के दिल करे। लेकिन एक बार आप अगर ये रॉ फूड को अगर चालू करेंगे, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया,
धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे पड़ेगी, पर बीच में कभी रोटी चावल दिल करता है तो बिल्कुल नहीं खाना है क्या
आपको, ये चीजें खाने के बाद आपको रोटी सब्जी खाने का दिल नहीं करेगा, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव।
भोग लगाने के लिए क्या करें?
हाँ तो भोग तो लगा सकते हैं ना, रॉ फूड का भोग बाबा को भी खिला करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने प्रयोग किया और मैंने सोचा अगर इतनी वैरायटी है कच्चे में भी, इतनी वैरायटी है तो क्यों नहीं खा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ दिन लगातार, मैंने 15 दिन अनुभव किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा मजा आया। उसके बाद तो जैसे बाहर गई मैं, और बाहर तो मैं नहीं कह सकती भाई इतनी आइटम अब बनाओ, हर एक जगह प्रोग्राम होता है तो वो खाना पड़ा, जब पका हुआ खाया तो ऐसा लगता है ये कहाँ खाने को वापस आ गए हम, मतलब इतना आनंद आ रहा था वो रॉ फूड खाने में। मैं आपको
तो बाबा को भी सलाद का, फ्रूट का, इन चीजों का भोग लगा सकते हैं,
लगा
भले
सकते
आपके किचन में अशुद्धि है, किसी के किचन में नॉन वेज प्याज बनता,
आप
है।
अपना एक बर्तन अलग से रख दो और उस बर्तन को आप कह दो कि भाई इसमें आप ना अंडा फंडा कुछ भी नहीं बनाए या उसको उसके लिए यूज ना करें।
बाबा के भोग के बर्तन अलग रख दो, रुमाल अलग रख दो, अलग से भोग लगाओ, जहाँ चाह वहाँ राह निकल आती है। सिर्फ जबान से नहीं किसी को पेनफुल शब्द बोलो कि हम तो आपके हाथ का नहीं खाते, आप तो पतित है, हम तो ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं, तो ऐसे किसी को टॉन्ट नहीं लगे। कोई कोई तो किसी को सीधा कह देते आप तो शूद्र हो, आपके हाथ का नहीं खाएंगे, तो उनको पेन हो जाएगा। बाबा कहते युक्ति से काम लो, डॉक्टर ने मना किया।
बड़ी दादी जी ने ये बात कही थी, हमारी माता जी जब यहाँ आई थी तो माता जी हार्ट पेशेंट थी, तो उसके कारण जब मैं और मेरी छोटी बहन दोनों समर्पित हो गए यज्ञ के अंदर, तो सबसे छोटी वाली बहन ने शादी किया, जब शादी किया तो दादी जी के पास खास लेकर के आई थी हमारी माता जी के शादी से पहले पहले के दादी आप उनको समझाओ, तो दादी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि चलो उसका दिल है शादी करने का, तो कहा आपका दिल है समर्पित करने का कि बाबा की सेवा में लगे, तो आप उसका हाथ मुझे दे दो। उसका हाथ दे दिया, माता जी ने बड़ी खुश हो गई कि अभी दादी उसको कन्विंस कर लेंगी और ये करेंगी। फिर दादी ने कहा आपने समर्पित कर दिया, अब आप फ्री हो गए। अब दादी उसको कहती है कि तेरी दिल है शादी करने की, भले करो। आप ये बात समझना, क्योंकि दादी ने कहा सेंटर पर जबरदस्ती रहने के बाद अगर किसी भाई से दिल लगा दी तो बाबा की बदनामी होगी, उसकी दिल है ना। तो अब दादी उसको छुट्टी देती है ये शादी करे। फिर उसके बाद दादी, माता जी ने कहा मैं इसका हाथ का खाना नहीं खाऊंगी, दादी इसको बोल दो आप। तो दादी ने यही बात कही अगर बीमार पड़ी और उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो रोने लगे कि मम्मी पापा मेरे हाथ का नहीं खाएंगे, तो दादी ने कहा कि बीमार पड़ी हॉस्पिटल में अगर गई तो क्या ब्रह्मा कुमारी तेरे को खाना बना करके देने आने वाली है क्या? कोई ब्रह्मा कुमारी खाना बनाकर देने नहीं आएंगी। और इसीलिए ये नियम जरूर रखो कि इसके हाथ का खाना खाना है, और इसीलिए तभी तुम्हारे संबंध अच्छे बने रहेंगे। समय आने पर यही खड़ी होगी। और सचमुच ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, दोनों माताजी पिताजी दोनों ही बेड में, छोटी बहन अमेरिका में, मैं कहीं टूर पर सेवा में गई हुई, अब कौन खाना बनाएगा, कैसे उसको खाना पहुंचाएंगे, कौन बनाकर? जितने दिन हॉस्पिटल में रहे उसी ने बना करके, तो दादी जी को, जब दादी जी ने उसको कहा कि और किसी का नहीं खाओ, लेकिन घर में अगर, और दादी ये युगलों को भी कहती थी कि बहू है बहू को तिरस्कार नहीं करो, उसके हाथ का खाना खाना है, क्योंकि वही अंतिम समय आपकी सेवा में होगी। इसी तरह जिसके पास में बहू नहीं होती थी तो बाबा दादी कहती थी बेटी का जरूर खाना खाओ, उसके मन में आपके प्रति अशुद्ध भावना नहीं होगा।
ये जरूर
ठीक इसी तरह माँ के हाथ का खाना माँ आपके लिए कोई बुरा नहीं सोचेगी, लेकिन हो सकता है कि जब आप माँ के हाथ का बना हुआ खाना बाबा को भोग लगा करके जब स्वीकार करते हो तो ये देख करके भी वो निश्चिंत हो जाती है ये हमको छोड़ करके जाएगा नहीं, और उस बहाने से उस प्यार में वो सेंटर पर एक न एक दिन आएगी जरूर।
ये कुछ एक पर्सनल सजेशंस दादी अलग अलग परिवारों को देते थे।
हाँ।
जरूर यूनिवर्सल जो नियम बाबा का बना हुआ है शुद्धन के लिए, वो तो पवित्र के हाथ का खाना बाबा की याद में बनाना, बाबा को भोग लगाना, बाबा की याद में खाना, टोटल फॉर्मूला यही है। लेकिन समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति अनुसार,
माना एकदम निकट माँ के लिए जब बोला आपने तो माँ के लिए मैं इसलिए बताया आपका कि वो माँ आखिर एक न एक दिन बच्चे के प्यार में वो सेंटर पर जरूर आएगी और बाबा का बनेगी।
कुमारों को लौकिक माँ की जहाँ बात आती थी उनके हाथ का खाने की दादी छुट्टी देते थे लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है तो उसकी छुट्टी जरूर मिलती है। सिर्फ अपने स्वादों के कारण से इसको छुट्टी न मान लेवे, अपनी सुविधाओं के कारण से न मान लेवे, लेकिन जैसे बताया समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति अनुसार इसका निर्णय किया जाता है। कुल मिला के बाबा की याद में पवित्र भोजन खाना ही योगियों के लिए
वो योग के ऊपर तो बहुत असर करता ही है।
अभी अगला प्रश्न हम पूछ रहे हैं आदरणीय योगिनी दीदी जी से। एक भाई ने पूछा है, दीदी रात को बाबा को याद करके सोए या ऐसे ही डायरेक्ट पूरी रात अजीब अजीब सपने आते रहते हैं जिनका कोई सिरिया पैर नहीं होता, ज्यादातर सपने ऑफिस से के रिलेटेड आते हैं जिससे 6-7 घंटे सोने के बाद भी साउंड स्लीप नहीं महसूस होती, क्या करें? साथ ही ये भी पूछा है कि जब ट्रैफिक कंट्रोल बजता है तब खड़े होकर स्टिल होना ज्यादा जरूरी है या चलते हुए भी योग कर सकते हैं?
ट्रैफिक कंट्रोल में तो हमको ये सिखाया गया है ना कि ट्रैफिक कंट्रोल माना क्या, जब गाड़ी को रेड सिग्नल मिलता है तो कार चलती रहेगी, नहीं कर सकते तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो स्टॉप ही करना है ना। तो यहाँ भी हमको अपने संकल्पों को स्टॉप करना है। चलते चलते योग करेंगे तो आपका योग नहीं लगेगा, चल क्यों नहीं सकते, पर वो योग नहीं होगा। उसको हम नहीं कहेंगे कि इसने ट्रैफिक कंट्रोल किया। ट्रैफिक कंट्रोल माना ट्रैफिक कंट्रोल के कार को स्टॉप करते हैं। उस तरह हमको भी जो भी हम, इसका मतलब आप काम करना चालू रखा है, चल रहे हो, वो तो काम करना आपका चालू ही, एक्टिविटी आपकी चालू रही, ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब ये है कि जब ट्रैफिक कंट्रोल होए तब हमको सब एक्टिविटी को स्टॉप करना है। जब चालू किया था तो ज्ञाना ट्रिनिडाड का प्रेसिडेंट है, वो भी वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। हम अपने हॉस्पिटल जो मैं चलाती हूँ वहाँ भी हम लोग बरोबर ट्रैफिक कंट्रोल रखते हैं और उनको समझाते हैं। फिर जिसको नहीं मालूम है वो कोई डॉक्टर चलते रहे वो अलग बात है, लेकिन हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल भी रखते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल का अर्थ ये होता है कि एक्टिविटी सब बंद करके मन को रिलैक्स करना है। जो काम आप कर रहे हो वो वापस आपकी थकावट चली जाए और वापस आप अगेन वापस आप चार्ज आपकी बैटरी हो जाए और आप अच्छी तरह काम कर सको, इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल रखा है।
सपनों का क्या करें दीदी?
अच्छा सपनों का ऐसा है कि आप जो सारा दिन की वही बात आएगी कि सारी दिनचर्या में आपको ऑफिस के सपने आते हैं, आप काम से काम करो तो नहीं होगा। ये कुछ ना कुछ हम उसे बातें करते हैं, कुछ पॉलिटिक्स होता है उसमें पढ़ते हैं ऑफिसों में, या कोई सब बाह्य वातावरण में अंदर हम भी इंक्लूड होते हैं तो जरूर है। और रात को सोएंगे सबसे पहले सपने नहीं आए आप अपने हाथ पांव फ्रेश होके सोओ, ऐसे ही नहीं वही कपड़ा वही, आप एकदम अपना सफाई हाथ पांव सब साफ होके सोएंगे। सफाई से बाबा को याद करके बाबा को बोलो मैं आपकी गोद में अभी आ रहा हूँ, बाबा मैं और आप अभी है। तो जब आप बाबा को याद करके सोएंगे तो ये सपने नहीं आएंगे, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। पर सपने आने का जो कारण है वो क्या है? कारण कारण हमारी दिनचर्या में हमने जो भी किया है वही तो वो चीज वहाँ रिएक्ट होके हमको सपने में आती है। इसलिए बात यही है, हमको अंतर्मुखी रहना है, हमको अपने सारे दिन में मैं क्या क्या संकल्प कर रही हूँ, सारे दिन में मेरे कौन से संकल्प चल रहे हैं, उस पर हमारा बहुत अटेंशन चाहिए। हम खूब चिंता करेगी, खूब फिकर में रहेंगे, खूब ऐसे होंगे तो रात को सोएंगे तो ऐसे ही सपने मेरे को आएंगे। और सपने कोई सच्चे नहीं होते, सपने तो जरूरी नहीं है कि ये सपने में मेरे को कोई मर गया, कोई ये हुआ वो आया तो ऐसा होगा। तो सपने कोई सच्चे नहीं होते, पर सारी दिनचर्या का रिएक्शन है। दिनचर्या ठीक करो तो नहीं आएंगे।
वास्तव में कहते हैं कि हम बाबा को याद भी करके सोते हैं तो भी सपने आते हैं। न सिर्फ याद करके सोना है लेकिन सारे दिन जो कर्म किया उसका जो इम्प्रेशन बुद्धि पर पड़ा, नेगेटिव या पॉजिटिव, उस कर्म के इम्प्रेशन को बाबा को अर्पित करके सोना है।
ठीक है।
बाबा ने सोने की विधि बताई है, सोने से 15-20 मिनट पहले साइलेंस करना है। सिर्फ गुड नाइट बाबा उतना नहीं,
मुरली
पढ़े फिर भी जो इम्प्रेशन फील हो रही है वतन में जाओ बाबा को अर्पित करो। गलती हो गई सॉरी बोलो, कुछ अच्छा मिला किया तो थैंक्स बोलो। बाबा ने उसको शब्द दिया था स्लेट साफ करके वतन में बाबा की गोदी में सोना है, ये कह के बाबा सवेरे आप मुझे उठाने आना, मैं आपसे मिलन मनाऊंगा।
एकांत में बैठो, साइलेंस पावर में बैठो। हम रोज ऐसे करती है, रात को बहुत कारोबार होता है हमारे हॉस्पिटल में, तो बहुत 3-5 होती है से 10 सेंटर बरोबर, कितने सेंटर बरोबर एक है। और वहाँ हम जाते हैं ना तो बहुत सी बातें आती है, बहुत सी बातें होती है, क्योंकि ये बाहर वालों से भी हम कनेक्शन में आते हैं, कॉर्पोरेटर मेयर पॉलिटिकल लोग ये लोग, किसको फ्री कराना है, किसको ये करना है, नहीं करेंगे तो मोर्चा लाएंगे, बहुत 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 यूनियन की अलग बात होती है, वो अलग बातें होती है, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो मैं अपना अनुभव क्या करती हूँ, आती हूँ हॉस्पिटल का पहले तो वहीं बाबा के रूम में बैठ के बोलती हूँ यहाँ की बात यहाँ छूटी अभी, और सेंटर पर जाते हैं वो पहले वहाँ के पांव खंखेर के निकाल ही दिया बुद्धि से, कभी बात नहीं करेगी सेंटर पर, कोई भी हॉस्पिटल की बात में करेगी नहीं। और रात को फिर बहुत कोई इश्यू बड़ा कोई पेशेंट का हो गया, कोई मर गया है, झगड़ा हो गया, बहुत कुछ होता है, रोज का रोज होता है। तो हम इसलिए फिर क्या करती है, आधा घंटा रात को अपनी कुर्सी फिक्स रखी है अपने रूम में, वहां आधा घंटा बिल्कुल साइलेंस में बैठती हूँ, बिल्कुल एकांत का अभ्यास। ये हमको इतना मदद करता है कि एकदम माइंड जो है वो रिलैक्स होके अच्छी
निकलती है। करोड़ों रुपए का एक पॉइंट है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। अभी आदरणीय उषा दीदी जी से एक क्वेश्चन है, अनगिनत कुमारों का ये सवाल है दीदी कि हम जानते हैं ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठता को, हम इसी के आकर्षण से यहाँ आए, हम शादी नहीं करना चाहते हैं, पवित्रता का पक्का संकल्प लिया है, पूरे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बनने चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमको अशुद्ध संकल्प आते हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति खराब होती है, उसका इलाज क्या है?
देखो, वैसे तो बाबा ने हम बच्चों को जो ये पवित्रता की धारणा दी है, इसके पीछे बहुत गुही राज है। और राज ये है कि सबसे पहली बात के भविष्य का जो पवित्रता का हमारा स्वरूप है वो बात तो अलग है, लेकिन वर्तमान तक भी अगर हम देखें तो वर्तमान में भी अगर हमारा लक्ष्य है कि मुझे संपूर्णता को प्राप्त करना है, तो संपूर्णता को के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये ब्रह्मचर्य की बात बहुत जरूरी है। दूसरी रहस्य भरी बात ये है कि आने वाले समय में ऐसी अनेक अशुद्ध आत्माएं, जो बाबा कहते हैं कि शरीर छोड़ने वाले बहुत होंगे, शरीर मिलने का कम होगा, तो जो आत्माओं का हिसाब किताब होगा उनको जो है चुकतू तो करना है, तो चुकतू करने के लिए उनको कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए। तो बाबा ने हमें ये ब्रह्मचर्य व्रत का नियम क्यों दिया है, उसके पीछे रहस्य यही है कि उससे जो हमारी पावर जनरेट होती है, जो ओरा हमारे आसपास क्रिएट होता है, तो वो भटकती हुई आत्माएं हमारे नजदीक भी नहीं आ सकती है, कितनी उसमें पावर होती है। लेकिन अगर हमारे मन के अंदर अशुद्ध संकल्प चलते रहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं लेकिन अशुद्ध संकल्प चलते रहते हैं, तो हमारा ओरा कौन सी क्वालिटी का होगा, शुद्ध तो नहीं होगा, तो वो आत्माएं बहुत सहज हमें शिकार बना सकती। इसीलिए आने वाले समय को देख करके बाबा ने ये नियम हम बच्चों को दिया है, चाहे खान पान की शुद्धि का भी नियम, जो भी शुद्धि के या मर्यादाओं के नियम बाबा ने दिए हैं, उसके पीछे गहरा रहस्य यही है कि आने वाले समय में अनेक प्रकार के जो मेंटल बीमारियां हैं, मानसिक जो बीमारियां हैं, चाहे डिप्रेशन कहो या ये सब चीजें भी जो है जो मेंटल इम्बैलेंस क्रिएट करने वाली है, तो अगर पवित्र शुद्ध विचार हमारे मन के अंदर नहीं है तो नेचुरल है कि उन मेंटल बीमारियों के भी शिकार होना स्वाभाविक है, वो अशुद्ध आत्माओं को भी हम खींच सकते हैं, अपनी अशुद्धि के कारण उसको भी खींच सकते हैं, और वो हमारे माध्यम से अपनी अशुद्ध अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न कर सकती है।
पर अशुद्ध संकल्प ना आए क्या करें, आते हैं ना, वो चाहते नहीं है, कोई कोई लिखते हैं, हमने लाख कोशिश की है, हमसे वीडियोस नहीं छूटती, इंटरनेट पे ऐसे ऐसे सीन भी देख लेते हैं और चाहते हैं अशुद्ध संकल्प ना आए।
देखो, संयम बहुत बड़ी चीज है, संयम को अपने जीवन में लाना, अगर आप समझते हैं कि आपके इंटरनेट के कारण वो चीजें आपको देखने का मन होता है तो कुछ समय के लिए वो फोन छोड़ दो। आपको फोन इसीलिए चाहिए कि आप बातचीत कर सको, छोटा फोन 500 रुपए का रख लो, कुछ समय उसकी परहेज कर लो, कुछ समय संयम को निभाना जरूरी है। और इसीलिए क्योंकि आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन होगा, उसमें इंटरनेट चालू होगा, तो रात रात भी वो देखेंगे, और जहां आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो नेचुरल है अमृत वेला आपका मिस होगा। जब अमृत वेला नहीं है पूरी साइकिल डिस्टर्ब होनी ही है उसके कारण से, और आपका पुरुषार्थ आगे बढ़ने के बजाय धीरे धीरे ऐसा लगेगा, और एक न एक दिन माया आपका पैर खींच करके उस दुनिया के अंदर ले जाएगी। इसलिए आप समझते हैं कि आपके अंदर इतना संयम नहीं है, तो उस एंड्रॉइड फोन को छोड़ दो कुछ समय के लिए।
कुछ स्वमान भी अगर बता दें पवित्र विचारों के लिए।
स्वमान भी तभी काम करेगा ना, अगर आप अशुद्ध वीडियो देखते रहेंगे, एंड्रॉइड फोन हाथ में रहेगा और वो देखते रहेंगे, वो स्वमान क्या काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा आपका स्वमान, वो रिपीट करने वाली बात हो जाती है। आप उस स्वरूप में स्थित ही नहीं रह पाते तो कैसे होगा? इसीलिए परहेज अपने मन के लिए बहुत जरूरी है, अपने अंदर दृढ़ता लाने के लिए ये अशुद्ध संकल्पों से अपने आप को परे, क्योंकि जितना मनुष्य के संकल्प वही चलते हैं जो वो देखता है। इसीलिए दृष्टि के बीच में जो बाबा कहते हैं आत्म स्वरूप को देखो, आत्मिक भाव को डेवलप करो, तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों को, इसीलिए कुछ समय के लिए उसको जब छोड़ देंगे। मैंने अभी किसी ने मेरे को बताया कि अमेरिका में ये प्रयोग हुआ, पांच दिन मोबाइल उनके हाथ में है लेकिन उसमें इंटरनेट कट कर दिया, इंटरनेट नहीं चलेगा, फोन नहीं चलेगा, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, खाली वो फोन है आपके हाथ में लेकिन कोई काम का नहीं, लैपटॉप देते हैं इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। पांच दिन उनको एक कमरे में रखा गया और देखा गया कि क्या करते हैं ये लोग, कैमरास फिट किए गए, क्या करते हैं ये लोग। आप मानेंगे नहीं, वो लोग पांच दिन तो क्या 24 घंटा भी उसके बिना नहीं रह पाए, सर दीवार में ठोकना चालू कर दिया, चीजें उठा उठा करके, पलंग उठा उठा करके फाड़ना चालू, इतना मानसिक रीति से असंतुलित हो गए। एक दिन के अंदर ये हालत हो गई उनकी, वो पॉजिटिव सोच नहीं पाए, इंटरनेट के बिना उनकी लाइफ इतनी हैंडीकैप महसूस होने लगी। आप सोचो, अगर आप के हाथ में वो एंड्रॉइड है और आपका संस्कार धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है कि आप उसके ऊपर क्या क्या देख रहे हैं आपको पता ही नहीं, और कहां चले जाते वो एंड्रॉइड, आपको कहां खींच के ले जा रहा है, आपको महसूस ही नहीं हो रहा है, उससे तो अच्छा है कि पांच दिन या एक महीना उस फोन से आप संयम ले लो, अपना छोड़ दो।
पर बाबा ने तो मना ही किया है ना, सीनी माँ, सीन माना पापों की माँ, बाबा तो वो ही बोलता था ना। पर हमारे आपका टाइम नहीं मिलता है क्या? टाइम बहुत पड़ा है क्या फालतू जो देखेंगे? भले ने एंड्रॉइड फोन हो तो क्या हो गया?
नहीं, कुछ समय माना, जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आजकल उसके लिए खुले,
उसके लिए भी खुले हैं डिएडिक्शन सेंटर,
रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खुलना पड़ा है आज समाज के अंदर लोगों को एंड्रॉइड फोन छुड़ाने के लिए। एक बहन के हाथ से फोन ले लिया उसके बॉस ने, वो मीटिंग में वही देख रही थी, उसके हाथ से फोन खींच लिया तो उसको झाग निकलने लगा और बेहोश होकर के गिर गई, बेहोश होकर के। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बात कर रही हूँ,
ये तो राजयोगी है सर, है ना, बहुत संयम वाले
हैं। तो
अभी छोड़ सकते हैं ये तो एंड्रॉइड,
अभी भी छोड़ सकते हैं,
अभी छोड़ सकते हैं। राजयोगी और कुमार महावीर है ना, ताली बजाना तो तब माने जब छोड़ो।
पॉजिटिव देखो, हमारे पास क्या भी हो हम लोग पॉजिटिव है, हम अपने ज्ञान और योग की शक्ति हमारे पास है, धारणा है, क्या भी हो हम तो कभी नहीं देखते है ना। आपके पास ऐसा टाइम फजूलत का है क्या, मिलता है क्या? बाबा ने हमको इतना ज्ञान योग धारणा और सेवा, हमारे पास बेहद सेवा है, अभी बंसा सेवा ही करो, बहुत कुछ बाबा ने हमको दिया है, तो हमको ये व्यर्थ बातों में जाना ही क्यों है? आप जाएंगे तो आपका मानसिक स्थिति खराब होने ही वाला है, वो तो है ही, बाबा ने पहले दिन से बताया है।
आज सब ने शाम को धर्मराज को पत्र लिखना है, तो इसलिए उस पत्र में ये सभी एंड्रॉयड का त्याग करके लिख करके जाएंगे और एक एक डब्बी छोटा फोन वो अपना अरेंज करेंगे। 500 रुपए
का फोन बहुत अच्छा।
उसको इंटरनेट में कुछ और पॉजिटिव अच्छा काम होगा, कुछ देखना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ ये
वो
चाहिए।
तब देखेंगे जब कंट्रोल आ जाएगा, उससे पहले नहीं देखेंगे। जब कंट्रोल आए तब तो सेवा अर्थ देखना मना नहीं है, पर अनकंट्रोल होती है तो सेवा से कहीं और पहुंच जाते।
अभी कंट्रोल नहीं है तो सतयुग में क्या कंट्रोलिंग पावर, बाबा बोलता है ना।
अच्छा, आदरणीय योगिनी दीदी जी से एक सवाल है। बहुत से कुमार पूछते हैं कि बाबा कहते हैं पवित्र रहना है, शादी नहीं करनी है, हमारे रिश्तेदार कहते हैं बूढ़ा हो जाएगा तो तेरा क्या होगा, कौन बूढ़ा हो जाएगा तो तेरा क्या होगा, कौन तेरे को रोटी खिलाएगा, फिर तू शादी नहीं करेगा। तो किसी ने लिखा कि मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, शादी के लिए मना करता हूँ तो माँ सिर पीटती है, बाप घर छोड़ के चला जाता है, तेरे को शादी तो करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी। फिर कोई ने लिखा, अरे सतयुग में सारे शादी करते हैं, अभी क्यों मना करते हो? अभी भी तो हम सतयुगी देवताओं की तरह शादी करके रह सकते हैं ना। दीदी जी बताइए, ये कुमार जरा ज्यादा एडवांस है।
पर बाबा ने सोच समझ कर
मोबाइल छोड़ नहीं सकते, अभी रह सकते हैं सतयुगी शादी के रूप में।
बाबा ने सोच समझ कर नियम बनाया है, पर बाबा भी एक्सेप्शनल थे, सामने खुद इतना विल पावर स्ट्रांग है। बाबा ने रोजी बेन का भाई और भाभी जो हमारे चंद्रू भाई थे यज्ञ में, और एक लड़की को बहुत बंधन था तो बाबा ने कराई, हमारे शुक्ला बेन एग्जाम्पल है। लेकिन इतनी आप लोगों में ताकत है, इतना विल पावर स्ट्रांग है, इतना डेडिकेशन की भावना है। बाबा खुद बोलता था कि आप लोग आमने सामने रहेंगे तो इतनी पवित्रता की शक्ति आपके अंदर है। और ये जो बोला कि बुढ़े होंगे तब क्या करेंगे, अरे बुढ़े होने की तो बात ही दूर है, कल क्या होगा वो हमें पता नहीं है। तो बूढ़ा होने के समय हम ये पहले से क्यों सोचे, और मेरा अनुभव है, मैं आपको बताऊं मैंने कितने कुमार कितने युगल, हम आपको बतावे, हमारे रमेश भाई शाह एग्जाम्पल थे, वो तो चलो शादी किए हुए थे परंतु उषाबेन शुरू से नियम से चले, परंतु देखो बाबा ने कोई न कोई रीति से, मैंने देखा कि ये परिवार को उन ये शुरू से बाल ब्रह्मचारी थे, बच्चे नहीं, तो भी बाबा ने कितना अंत तक मदद किया, कोई ने कार्य किया, कभी कोई कमी महसूस नहीं की। ऐसे कुमार जीवन में भी हमें देखा है जो दृढ़ संकल्प से बाबा पर पूरा बलि जाते हैं, संपूर्ण समर्पण हो जाते हैं। तन से समर्पण होना इजी है, धन है धन से समर्पण होना इजी है, पर जब हम एक बार मन से बाबा को समर्पण हो गए, संपूर्ण समर्पण हो गए, तो ऐसा हो नहीं सकता है। आपने एक कदम आप आगे बढ़े हो, बाबा हजार कदम आपको मदद करेगा करेगा और करेगा, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, ये तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ। आपने बाबा को अपना हाथ साथ दिया, जीवन बाबा को हवाले किया, तो बाबा जो है वो बांधा हुआ है, ये तो पक्का निश्चय कर ही लो आप कि कभी बाबा ऐसे नहीं करेगा, ये आप सोचो भी नहीं अभी से कि तो क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्यों क्या और किस लिए करेंगे, तो बहुत लाइन व्यर्थ संकल्पों की चालू हो जाएगी और आप उन्नति की जगह अवनति में उतरते जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, आपको आपका जो गोल है प्योरिटी हमारा फाउंडेशन है, प्योरिटी शेरणी का दूध चाहिए तो बाबा बोलता है सोने का बर्तन चाहिए। हमको जीवन में सुख शांति चाहिए तो पवित्रता, माँ को मार डालेंगे तो बच्चे कहाँ से मिलने वाले हैं? सुख और शांति आपके जीवन में रहने वाले ही कहाँ से?
कैसे हम रहेंगे तो पवित्र, पर पवित्र विवाह गंधर्वी वो तो कर सकते
नहीं। वो कितना भी बोलो वो गृहस्थ ही बोला जाएगा, और गृहस्थी जीवन ही हम उसको कहेंगे। वो एक अलग लाइफ है, जिसको करना है वो करे अलग है, लेकिन कुमार जीवन जो हम कहते हैं, अरे बहुत अच्छा है, किसका वो जिम्मेवारी नहीं, आप जो चाहे सो करे। दादी तो बोलती थी, हम कहते सो ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या है, हम कहते सो कन्याओं से उत्तम एक कुमार है, क्योंकि आप घर में रह के, हम लोग तो मजा है संगठन में रहते हैं। मैं कई बार हमारी बहनों को भी बोलती हूँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सेंटर पर रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ये कुमारों का जीवन देखो तो कैसे है। तो ये आपको अपना दृढ़ संकल्प, बाबा ने कल मुरली में कहा महावीर बनना पड़ेगा, हनुमान बनना पड़ेगा। बाकी वीक संकल्प वो आप वीक सोलो, जो बोलते हैं ना हम दो रहे वो वीक सोले, उसके अंदर अपनी विल पावर है नहीं, इसीलिए ऐसे विचार आते। बाकी दृढ़ संकल्प करो तो कुमार जीवन, जैसा मैं कहती हूँ कोई जीवन ही नहीं है।
इसलिए कोई भी पूंछ लटकाने का संकल्प न करना, इस बाबा के पवित्र दरबार में कोई अपना मैच ढूंढने की कोशिश मत करना, फ्लॉप केस हो जाते हैं, वो भी अपराध है। इसलिए बाबा को युगल बनाओ, अकेले हो कहाँ, हजार भुजा वाला भगवान साथ है।
यदि ऐसे करेंगे तो हजार लफड़े दूसरे
सुन लीजिए, हजार लफड़े आएंगे तो लफड़ों का संकल्प मत करो। सतयुगी विवाह सतयुग में जाकर करना है, संगम युग पर सतयुगी विवाह करके आप संगम को सतयुग नहीं बना सकते, संगम को संगम रहने दीजिए। यहाँ सतयुग वाले काम अभी करने शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं।
देखो आज जो क्लास किया बेफिकर बादशाह, तो बादशाह शब्द तो बादशाह तो बहुत है, परंतु बेफिकर बादशाह बेगमपुर के बादशाह जो है वो हम इस संगम युग पर है। लक्ष्मी जैसे दीदी ने बताया, लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी पीछे है, परंतु अभी हम बेफिकर बादशाह है, हमें वही बेफिकर बादशाह बनना है तो कुमार जीवन ही अच्छा है।
आदरणीय उषा दीदी जी, एक भाई कहता है मैं बहुत दुखी रहता हूँ, पता मैं बहुत दुखी रहता हूँ, यहाँ भी आया हूँ तो खुशी नहीं आती है, बार बार बहुत जोर लगाता हूँ, योग लगाता हूँ, कोई पिछला हिसाब किताब है या क्या मेरे ऊपर है, मुझे समझ नहीं आता है, जो मेरा बार बार रोने को भी मन करता है, ये क्या स्थिति है? कईयों की कभी कभी ऐसी होती होगी, तो वो जरा स्पष्ट करें।
ऐसे हैं कि वास्तव में हम सभी सुखदाता बाप के सुखदेव बच्चे हैं, और इसीलिए दुखी होने का सवाल नहीं आता है, लेकिन दुख अगर महसूस कर रहे हैं ये अपनी कमजोरी है कि उमंग उत्साह के संकल्प आपके पास नहीं है, खुशियों भरा संकल्प आपके पास नहीं है, इसीलिए आप दुखी हो जाते हैं। तो ये याद रखो, ये स्वमान लो हर रोज सुबह उठ करके सुखदाता बाप के, मैं सुखदेव बच्चा हूँ, मुझे अनेकों को सुख देना है। आप सुख देने का काम करो, जितनी दुआएं आपको मिलेगी ये दुआएं ही आपको अंदर से सुखी कर देगा, सुकून का अनुभव कराएगा, और आपको रोने का मन नहीं करेगा। ये रोने का मन ये सब इसीलिए करता है क्योंकि आपके पास अंदर में खालीपन है, खोखलापन है, तो ये खालीपन को भरना पड़ेगा। जितना ये खोखलापन अंदर से आप भर देंगे, फिर आप देखो कि कैसे ज्ञान का खजाना जो बाबा हम बच्चों को दे रहा है, ये ज्ञान के खजाने में आप रमण करना चालू करो। जितना ये ज्ञान के खजाने से आप अपने आप को भरपूर करेंगे, सुख देने का काम करेंगे, जितना सेवा भाव अंदर रखो, सेवा करते जाओ, अनेकों को सुख देते जाओ निर्माण हो करके, तो देखो आपका जीवन कैसे बदल जाता है। मैं तो यही कहूंगी।
बहुत अच्छा स्पष्ट किया।
नहीं, परंतु इसमें ऐसा है, मैं आपको बताऊं, कईयों को कभी डिप्रेशन आता है, फैमिली हिस्ट्री में होता है, कोई 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 फोरफादर को होता है, तो डिप्रेशन का ये सिम्टम्स है कि रोना आता है, निराशा, फ्रस्ट्रेशन आता है, ऐसा ये डिप्रेशन आ जाता है। तो देखो, दवा और दुआ दोनों चाहिए उस समय। खाली वो रोता रहेगा, खाली वो ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, सुसाइड टेंडेंसी हो जाएगी, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा और सुसाइड करने की टेंडेंसी हो जाएगी। इसीलिए जैसे उषा दीदी ने बहुत अच्छा सुनाया, दुआएं लेनी है। एक तो दुआ तो है ही, साथ में दवा, मेडिसिन और मेडिटेशन। तो दवा भी बहुत जरूरी है, आप लोगों को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, उनको अपना बताना चाहिए कि मुझे बहुत रोना आता है, मेरे को ये फ्रस्ट्रेशन आता है, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।
इलाज भी अवश्य करें और बाबा का ज्ञान भी यूज करें, डबल पावर से हमारी दुआ है, ठीक हो जाएंगे। और उषा दीदी जी, एक छोटा सा सवाल और है, संगम युग डायमंड युग है जहाँ हमें प्यारे बाबा का साथ मिलता है और हमें सतयुगी संसार में नहीं मिलेगा, फिर हमें सतयुगी राजाई का नशा, उमंग, उत्साह, खुशी क्यों रहता है? क्योंकि हमें पता है वहाँ बाबा तो होगा नहीं, और फिर वहाँ सुख शांति कैसे रहेगी? क्योंकि जब दुख है तो सुख का एहसास होता है, वहाँ दुख ही नहीं तो सुख शांति कैसी है? ये इस भाई की मशीन चल रही है दिमाग की, ऐसी बताए कैसे?
ऐसा है कि सतयुग में जब जाएंगे तब की बात तब होगी, पहले तो बी इन प्रेजेंट, हम तो यही कहेंगे वर्तमान में जीना सीखो, और वो तो फल है ही है, इसीलिए गीता में कहा जाता है कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, वो तो मिलना ही है, वो उसके कर्म की परछाई है, लेकिन वो भविष्य का सुख महाराजा महारानी, अभी हमारे कर्म ही नहीं है महाराजा महारानी बनने वाले, तो कैसे महाराजा महारानी बनेंगे या वहाँ सुख का अनुभव करने के लिए? आप ये फैंटेसी में जीना नहीं सीखो। सतयुग की बात, सतयुग में ये फल स्वरूप है, लेकिन वर्तमान में बाबा के साथ का अनुभव करो। जितना बाबा के साथ जिएंगे, जितना बाबा के साथ के एक एक पल का सुख का अनुभव करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, भविष्य आपका सुरक्षित हो जाएगा। भविष्य को सोच करके वर्तमान में कुछ न करो और बैठ करके ये फैंटेसी की दुनिया में आप जाओ, ये सही नहीं है, ये योग भी नहीं है। इसीलिए वहाँ सुख की बात, वो बात ही अलग है, वो दुनिया अलग है, लेकिन यहाँ बाबा के साथ का सुख तो लो, वहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ की बात भी गवाते क्यों है? यहाँ तो कम से कम उस सुख का अनुभव ले लेवे ना हम।
बाकी ये भक्ति मार्ग की बात है कि दुख में सुख का अनुभव होता है, वो कहते हैं जहाँ रात है तो दिन का एहसास है, बाकी ज्ञान मार्ग ऐसा नहीं कहता है। बाबा ये कहते हैं कि आधा हिस्सा तो 100% हम सब सुख में रहते हैं, क्योंकि आत्मा बेसिकली सुख स्वरूप है। लगता है ये भाई अभी नया नया भक्त से ज्ञानी बना है, इसलिए उसको लगता है कि दुख के बिना सुख का एहसास नहीं, जैसे भूख लगे बिना भोजन का टेस्ट नहीं, ऐसे माना जाता है। बच्चा रोए नहीं जब तक माँ दूध नहीं देती, क्योंकि रोएगा तो भूख भड़केगी और उसको दूध हजम होगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि पहले रो तो सुख मिले, बाबा कहते नहीं, आत्मा है ही सुख स्वरूप, बाकी वहाँ बाबा नहीं होगा, पर संगम युग पर हमने बाबा का सब कुछ अपने में समा लिया, संपूर्ण गुण, संपूर्ण शक्तियाँ, तो वो वहाँ गैप फील नहीं होगा। जब हम संपूर्ण समा लेंगे तब बाबा से जुदा होंगे, उससे पहले नहीं। इसलिए जल्दी जल्दी बाबा की सारी गुण और शक्तियाँ अपने में समा लो। बाकी लिखा है 16 कलाएं कौन कौन सी है, जगदीश भाई जी की 16 कलाओं वाली किताब बुक स्टॉल पर मिलती है, वहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। 16 कलाओं के नाम लिखे हैं, बाकी 16 कला माना 100% प्योर, 1, 2, 3 करके 16 नहीं है, फिर भी ब्रह्मा बाबा की 16 विशेषताएं जगदीश भाई जी ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन की है, उसको पढ़ सकते हैं। आदरणीय योगिनी दीदी जी, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस तो अभी 100 एक बाकी है, लेकिन अगली भट्टी में कुमारी सी लालच से आएंगे कि अगली भट्टी में हमारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। नहीं तो किसी किसी कुमार ने लिखा है कुमारों की अलग भट्टी रखेंगे तो अगली भट्टी में आएंगे, नहीं तो अधर कुमारों के साथ हमें मिला दिया तो इनको लगा कि हमारा स्टैंडर्ड डाउन कर दिया।
नहीं, मैंने तो गीता बहन ने बोला, मैंने कहा नहीं भाई कुमारों का अलग ही करो, मिक्स नहीं करो।
ये तो आज हॉल में पूरे आ गए, लगता है काफी चले गए हैं, नहीं तो पहले दिन की उद्घाटन की संख्या 2200 थी जबकि अगले पूरे दिन में 1000 भाई और आए हैं, उसमें भी तो 200-300 कुमार होंगे और यहाँ की सिटिंग कैपेसिटी 1700 है,
तो
कहाँ बैठना था।
इधर
अगली भट्टी में सबका ध्यान जा रहा है, जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, दोनों दीदियाँ थोड़ा थोड़ा उत्तर देंगी। भाई
आपका स्टेटस कभी डाउन नहीं होगा अदर कुमारों के साथ अगर रखा तो भी, आप कुमार माना, जैसे दीदी ने कहा 100 कन्याओं से उत्तम कुमार रहेंगे ही रहेंगे ना, इसीलिए आपका स्टेटस कभी कम नहीं होगा।
यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, चिंता ना करो, जहाँ भी बैठोगे आप कुमार ही रहोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
नहीं, पॉइंट अलग अलग, प्रॉब्लम अलग अलग होते हैं ना, वो राइट है ये लोग।
अच्छा, बहुत से कुमार है धन सफल करना चाहते हैं, कोई कहते हैं मैं सारा अभी भंडारी में डालूं तो हमारी टीचर कहती है नहीं अपने लिए भी कुछ रख, मुझे सफल नहीं करने देती है, मैं क्या करूं। फिर अगर हमने सफल करना होता है तो भंडारी में चुपचाप डाल देना चाहिए, तो टीचर को कैसे पता चलेगा दिया कि नहीं दिया। हाथ में देना चाहिए तो हमारी कुछ इज्जत भी होवे, कैसे क्या करना चाहिए। फिर मधुबन में आओ तो किसी भंडारी में डाल जाओ, या किसी महारथी को पकड़ाओ, या यहाँ ट्रे में डालो, या फिर कोई अच्छी महंगी महंगी चीज, महंगी महंगी चीजें गिफ्ट में ला करके दो, कोई गोल्ड की चीज लाओ ऐसे देना चाहिए, या गुप्त देना चाहिए। सफल करना हो तो कब, कितना, कैसे, क्या करें। उषा दीदी जी बताएं जरा।
प्रकाशमणि दादी जी हमेशा कुमारों को ये बात कहती थी कि अपने धन का 5 हिस्सा करो।
वही
5 हिस्सा किस तरह से करना है, तो दादी जी, बड़ी दादी जी हमेशा कहती थी कि जो आप कमाते हो उसका 5 हिस्सा बना दो। एक हिस्सा आप मधुबन यज्ञ के लिए, एक हिस्सा आप सेंटर पर करो, अपने सेंटर पर करो, तीसरा हिस्सा आपका पर्सनल जेब खर्च जो चलता है उसके लिए रखो, चौथा हिस्सा अपने माँ बाप को भी दो, और पांचवा हिस्सा आप बैंक में जमा करो, जब समय हो या कभी आपको उसकी आवश्यकता हो, कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम हो या ऐसी कोई जहां आप यूज करना चाहते हैं तो उसमें यूज करो। तो दादी जी हमेशा कुमारों को यही कहती थी कि अपने धन की जो इनकम है उसका 5 हिस्सा करो और 5 हिस्से में बांटो, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। एक हिस्सा मधुबन, एक हिस्सा अपना सेंटर। मधुबन माना मधुबन, फिर बड़े यज्ञ के अंदर ही जाना चाहिए। 10 जगह भाई चढ़ावा जैसे चढ़ाते हैं मंदिर में, हर देवी के आगे, हर देवता के आगे चढ़ावा चढ़ाते, ये सिस्टम नहीं होनी चाहिए। यज्ञ के अंदर भी आपको जो देना है बाबा के यज्ञ में, क्योंकि जो यज्ञ के भाई बहन है, हम सबकी परवरिश यज्ञ के इनकम से ही हो रही है। हम सबका भोजन क्या, पानी क्या, कपड़े क्या, सब कुछ हमें यज्ञ से ही मिल रहा है, और वो यज्ञ में कहाँ से आ रहा है, जो लोग धन सफल करते उससे ही आ रहा है। तो 10 जगह चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, जो गुप्त दान महापुण्य, तो आप यज्ञ के अंदर अपना जो सफल करना चाहते हैं वो एक ही स्थान पर दादियां जब आपको यहाँ सौगात देती है उसी समय दादी के हाथ में दे दिया, या आप भंडारी में डाल दिया, बस
निमित ईशु दादी को,
हाँ, या निमित दादी है उनको चेक लिख करके आप दे दो, चेक सीधा जमा हो जाएगा यज्ञ के अंदर। तो एक हिस्सा यज्ञ, एक हिस्सा अपना सेंटर, सेंटर पर भी आप गुरुवार को भोग स्वीकार करते हैं, आपकी परवरिश हो रही है, आपकी पालना हो रही है, आपको बहने मुरली सुनाते हैं, हर रीति से आपकी परवरिश हो रही है सेंटर पर, तो एक हिस्सा सेंटर पर, तीसरा हिस्सा आपका खुद के लिए रखो, खुद की जेब खर्च, कुछ भी खरीदना करना चाहते हैं आप, फ्रूट लेना चाहते हैं आप, कुछ खरीदना चाहते हैं तो नेचुरली अपने लिए भी तो रखना होता है। चौथा हिस्सा अपने माता पिता को भी, अगर उनको नहीं चाहिए वो बात अलग है, लेकिन अगर चाहिए तो उनके लिए भी, क्योंकि आपका फर्ज है, आपका एक जिम्मेवारी है, तो उनके प्रति आप दे सकते हैं। अगर वो मना करते कि भाई हम आपकी कमाई नहीं खाते तो बात अलग है, तो चार हिस्सा करो। और एक हिस्सा आप अपना बैंक बैलेंस उतना जमा रखो, कभी कोई बीमारी आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कहीं पर भी आवश्यकता पड़ी आपको, तो उसमें भी जरूरत है। तो इसलिए ये पांच हिस्सा करो, नहीं तो चार हिस्सा करो, जैसे आपकी सुविधा है उस अनुसार। और दादी हमेशा यही एडवाइस कुमारों को देती ही थी जब भी कुमारों की भट्टी होती थी।
बहुत अच्छा स्पष्ट हो गया। अभी छोटा सा क्वेश्चन लास्ट योगिनी दीदी जी से।
हाँ? बैंक कौन सी बैंक में डालना चाहिए?
नेशनलाइज बैंक में ही डालने का,
कुछ न कुछ हिस्सा तो फिर बीच है, 5% करो, 2% करो, आपको अपना बचा करके तो रखना ही है, जरूरी बात है, कुछ भी सेफ तो नहीं है, फिर भी श्रीमत है। आदरणीय योगिनी दीदी जी, बिल्कुल लास्ट एक बात हम पूछते हैं, कुमारों को फीलिंग बहुत आती है,
आती है
आपस में सेवा करते तो एक दूसरे से, कभी दीदियों से, कभी इससे, कभी उससे, तो कहते फीलिंग से मुक्त कैसे हो? ये प्रश्न पूरा करके फिर हम 3 मिनट योग करेंगे, बाकी सब प्रश्नों से पार चले जाएंगे।
फीलिंग आने का कारण पहले तो क्या, दिल छोटी होती है तो फीलिंग आ जाती है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण ये है कि ईगो प्रॉब्लम कुछ हो जाता है आपस में, तो ईगो प्रॉब्लम के कारण भी फीलिंग आती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष भाव हो जाता है तो भी फीलिंग आ जाती है। कभी बड़ी बहन ने कुछ बोल दिया जोर से, या कुछ कह दिया, या तो हमारी इच्छा ये थी पर उन्होंने हमारे को ये कराया, तो भी फीलिंग, माना फीलिंग आने के बहुत सारे कारण है। परंतु मेरा भाव ये है, हम कभी फीलिंग नहीं लाते। क्यों नहीं लाते? क्योंकि हमको पहले से अपनी दिल को जो है ना वो बड़ा रखना है। ठीक है ना, इसने मेरे को बोला, इसने अपना पार्ट ऐसा बजाया, मैं अपना पार्ट बजाऊं, ये यही सोचो। कभी कभी ये इच्छा होती है, इसको मान मिल रहा है, इसको नाम मिल रहा है, इसको शान मिल रहा है, नाम मान शान, मेरे को वो नहीं मिल रहा है। इस फीलिंग आती ही इसीलिए है, इसीलिए आप बाबा ने मेरे को जो पार्ट अभी दिया है वो मेरे को सबसे बेस्ट और अच्छा पार्ट ही बाबा ने मेरे को दिया, तो मुझे मेरा पार्ट अच्छा बजाना है। ठीक है, इन्होंने मेरे को ऐसे बोला, ऐसे किया, ये आप माइंड ही नहीं करो, ये आप माइंड ही नहीं करना चाहिए हमको। किसी से निकल गया वो उसकी गलती है, लेकिन आप क्षमा अपना, अभी जैनियों के चल रहे ना, हमारी दादी जानकी हमेशा हमको सिखाती है फॉरगेट एंड फॉरगिव करो। ठीक है ना, मेरे को हो गया, फीलिंग नहीं आवे, गुस्सा नहीं आवे, इसका एक ही सॉल्यूशन यही है जो दादी कहती है फॉरगेट फॉरगिव। ठीक है, बोला ना, हमको फुल स्टॉप लगा देना है, हो गई ना बात, अभी तो कुछ नहीं हो सकेगा ना, तो आगे हम ध्यान रखेंगे, आगे वो ध्यान रखेंगे। और जब वो फ्री है, जिससे आपको फीलिंग आई, आप उससे खुला बैठो, उस समय आप गुस्सा नहीं करो, उस समय झगड़ा नहीं करो। थोड़ी यदि मेरे से भी किसी को फीलिंग आ जाती है, कोई बहन को, तो मैं भी उसको बोलती हूँ कि ठीक है, मैंने तेरे को इसके सामने कहा, तेरे को फीलिंग आ गई, तू शाम को मेरे पास आ, रात को, तो बोल दीदी ये बात ऐसे नहीं, ऐसे थी, तो मैं भी उनको कहती हूँ सॉरी, आगे मैं ध्यान रखेंगी। तो ये हमको करना है, उनके पास जाके जो बात है वो देके लेन देन करके फुल स्टॉप लगा देना है। बाकी यदि आपने उस बात को चलाया, दादी गुलजार भी कहती है कि रामायण वो सुनाते हैं 5000 साल के बाद सीता का हरण हुआ, फलाना हुआ होता है, तो सब लोग रोने लगते हैं, तो 5000 साल के बाद वो अभी रिपीट होने वाली है, जो भी फीलिंग आई जो भी हुआ, तो अभी हम उसको मनसा में लेके व्यर्थ संकल्प चला के और फीलिंग को बढ़ा के हम क्यों हैरान होवे? वो अभी हो गया, 5000 साल के बाद होएगा।
बहुत बहुत थैंक्स दोनों दीदियों का, बहुत सुंदर प्रश्नों का विस्तार हुआ। यूं तो सब शाम तक भी बैठे रहना चाहते हैं, लेकिन घड़ी बहुत, हाँ सब संतुष्ट हैं, हाथ खड़ा करें, बहुत संतुष्ट है जी, बहुत खुश है। जिनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले वो भी संतुष्ट रहें, चाहे वो किसी ने गीता पाठशाला संबंधित प्रश्न लिखे हैं, चाहे समर्पित होने से संबंधित लिखे हैं, उसमें एक ही उत्तर देते हैं, अपने निमित्त की मान करके चलो तो सब बातों का उत्तर आ जाएगा। गीता पाठशाला की भंडारी कौन खोल सकता है? केवल निमित्त टीचर, भले भाई क्लास चलाते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन भंडारी है या वहाँ से जो भी यज्ञ प्रति आता है वो सेंटर के प्रति होता है, क्लास कराने जाने वाले कुमार या भाइयों के प्रति नहीं। बाकी शाम को 4:30 बजे यहाँ पर ही गीता पाठशाला से निमित्त भाइयों के लिए विशेष क्लास है, पूरे 4:30 यहाँ पहुँच जाएंगे, 5:30 यहाँ से डायमंड हॉल में जाएंगे, वहाँ नलिनी दीदी का क्लास और विशेष योग है, रात्रि क्लास 8:30 बजे सबको मालूम है सूर्य भाई जी का है। अभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे और भाई एक इसी साइलेंस में ही कुमारों के प्रति एक प्रेरणादायक गीत गाता है। इनको माइक, यही वाला माइक ले लो, सभी बाबा की याद में एकाग्र होके बैठेंगे।
जला जलेगा आखिरी सांस तक, मसाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक, कारबा चला है जो चले क्षितिज के पार तक, कारबा चला है जो चले क्षितिज के पार तक, झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए, झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए, सत्पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए विजय का नाम लीजिए। राह है राह बर अनोखा है, भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है, भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है, समर्थ का है साथ व्यर्थ को विराम दीजिए, समर्थ का है साथ व्यर्थ को विराम दीजिए, सत्यपथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्यपथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए विजय